السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جیسی آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی اور سکون ملے گا اور لذت ملے گی، وہ کہیں اور نہیں ملے گی. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو المجید ہے، مجد والا. مجد میں اس کی کہ وہ کتنی بزرگی والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، یہ معنی آتے ہیں. یعنی مجید کا معنی ہے ساری تعریفوں کے لائق، اور تعریف کے لائق کوئی تبھی ہو سکتا ہے جب وہ واقعی اس کے اندر ایسی صفات موجود ہیں. اور اسی وجہ سے پھر انسان جب اس سے محبت کرتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر اتنی کمال کی صفات ہیں، انسان کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا. باقی تو سارے ویک ہیں، وہ کوشش بھی کریں تو آپ کے جو پیمانے ہیں ان کے اوپر وہ نہیں پورے اتر سکتے. اور اس کا معنی ہے المجید کا وہ جو شرافت اور کرامت والی ذات ہے، جس کے تمام کاموں میں حکمتیں ہیں اور اس کی عطا اور بخشش بے شمار ہے، جو اپنے بندوں پر نعمتوں کے ذریعے احسانات کرنے والا ہے. اللہ اکبر، وہ مجید ہے. یعنی اس کی افعال بھی، اس کے صفات بھی، اس کی ذات بھی سب کمال کے ہیں، پرفیکٹ ہیں. تو کسی اور میں کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہے، کوئی کتنا ہی بڑا حکمران ہے، تب بھی ان کے اندر پرفیکشن نہیں ہو سکتی. ان کو بھی کسی کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی کی کہ وہ اس کو سنبھالیں، کسی نہ کسی کی کہ وہ اس کا خیال کریں، جو اس کی بادشاہت کو چلائیں، جو اس کے بازو بنیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو صرف اپنی ذات میں بھی اور اپنے تمام کاموں میں بھی مجید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو اس طرح بیان فرمایا، فرمایا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور اس کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے. وہ میزان کو اوپر اور نیچے کرتا ہے، ترازو کو، اور وہ اعمال جو دن کے ہیں اس کی طرف چڑھتے ہیں رات سے پہلے، اور رات کے اعمال اس کی طرف چڑھتے ہیں دن سے پہلے. یعنی جو بھی ہم دن میں کرتے ہیں رات سے پہلے پہلے اس کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کو پتہ نا، اثر کے بعد جاتا ہے، اور رات کے بھی اعمال اس کی طرف چڑھتے ہیں دن نکلنے سے پہلے پہلے. اس کا حجاب نور ہے، اور اگر وہ اپنا حجاب اٹھا دے تو اس کے چہرے کا نور جس جس چیز تک اس کی نظر پہنچتی ہے اس کو جلا دے. اور اللہ تعالیٰ کی نظر کہاں تک پہنچتی ہے؟ پوری مخلوق تک. تو اس کا مطلب ہے ہر چیز جل جائے. وہ ایسا ہے، اتنا پرفیکٹ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ذو العرش المجید فعال لما یرید. عرش والا وہ المجید ہے. اگر مجیدو پڑھیں تو عرش والا المجید ہے، وہ جو چاہے کرے. اور اگر مجیدی پڑھیں، ذو العرش المجیدی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عرش مجید ہے، یعنی وہ بھی گلوریس ہے، وہ بھی بزرگی والا ہے، میگنیفیشنٹ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا عرش اس کی سب سے عظیم مخلوق ہے، تو اس کے لیے بھی مجید کا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں. وہ ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو سب سے بڑی مخلوق بھی ہے اس کی. جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے چھلا صحرا میں پڑا ہو. اگر کئی صحرا اور اس میں ایک چھلا پڑا ہو تو وہ تو نظر بھی نہیں آئے گا. صحرا اتنا بڑا ہوتا ہے، تلاش کرنا چاہیں آپ ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو، کیسے آپ کو لق و دق صحرا میں وہ ملے گا؟ تو 7 آسمان कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं, जबकि आप देखें हम जिस आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं, आसमाने दुनिया, ये ही इतना वसी है कि जितने सितारे सैयारे साइंसदानों को आज तक मालूमात हुई हैं, वो कहते हैं कायनात का वो एक जर्रा है सिर्फ जो हमें अभी तक पता चला है। और उसमें ही उन्होंने कहा है कि एक एक गैलेक्सी में 400 बिलियन सितारे हैं, 400 बिलियन, और 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज कहते हैं अभी तक हमें पता चली हैं। अब ये सिर्फ आसमाने दुनिया पे है, तो 7 आसमान मिला लें वो कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं कि जैसे आप एक छल्ला देखें सहरा, इतने छोटे हैं, कुर्सी कितनी बड़ी है, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में कैसे है? जैसे सहरा में छल्ला पड़ा, कुर्सी भी इतनी छोटी अर्श के मुकाबले में, इतनी टाइनी चीज है। और कुर्सी के बारे में आता है कि ये तो फुट स्टूल को कहते हैं, यानी हम ये नहीं कैफियत जानते फुट स्टूल अल्लाह ताला के हाँ कैसा है क्या है, बस हमें इतना पता है। तो एक तो कुरान करीम में अर्श के लिए आया मजीद, और एक कुरान के लिए आया, हम भी कहते हैं ना कुरान मजीद, तो काफ सूरह काफ में काफ वल कुरान मजीद, काफ कसम है कुरान मजीद की, ये कुरान की भी सिफत है कि वो ग्लोरियस है, बुजुर्गी वाला है, बड़ाई वाला है। तो अल्लाह ताला की ये सिफत हमें समझाती है कि हमें अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी बुजुर्गी के आगे झुक जाना चाहिए, और उसकी परफेक्शन को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उसके अंदर परफेक्शन है। जैसे बाज दफा लोग उसके अहकामात या शरीयत या उसके फैसलों के अंदर मीन मेखे निकालते हैं, इतराजात करते हैं, तो जो उसके तो अफआल हैं, जो उसके फैसले हैं, जो उसके अहकामात हैं, सब में परफेक्शन है, तो फिर मीन मेखे कैसे निकाल सकते हैं, फिर नक्स कैसे निकाल सकते हैं? उसकी परफेक्शन के आगे तो हमें उसके गुण गाने चाहिए, उसकी तारीफें करनी चाहिए, इसीलिए हमीद उम मजीद आता है। और हमीद को भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम, आज हम मजीद देख रहे हैं, तो वो हमें तो चाहिए कि उसकी इतनी तारीफ करें, उसके आगे झुक जाएं, उसकी इबादत बजा लाएं, इतना परफेक्ट है, और उल्टा उसकी बातों को लेकर और फिर उनको अपनी अकल के ऊपर परख के और कहना कि ये तो बात समझ ही नहीं आती कि ये कैसे कह दी गई, ये तो सही नहीं है, या ऐसी कोई बात कहना, तो ये कभी भी जुर्रत नहीं करनी चाहिए। और जब आप कोई भी चीज देखें अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में, तो उस वक्त जरूर सोचें कि वो जात बुलंद सिफात की मालिक है, और कितनी शान वाली है जिसने इस चीज को बनाया, वो कितनी ऐब और नक्श से पाक जात होगी जिसने इस चीज को तख्लीक किया। कि हर चीज में आपको नजर आता है कैसे आसमान है, कैसे जमीन है, कैसे ये चरिंद परिंद, जितनी अल्लाह ताला की मखलूकात में गौर करें हमें यही समझ में आता है कि वो जात कैसी होगी। वाकई वो जात अलमजीद है, ऑनरेबल जात है, और वो ये भी इसके अंदर माना है जिसका हाथ खुला हुआ है, बहुत खुले हाथ वाली जात। तो वो तो हर ऐब से पाक है, और हर रोज नई शान में होता है, वो बुजुर्गी वाला है, उससे सिवा कोई कितनी अपने आप को समझे कि वो बड़ी शान वाला है, तो उसकी कोई कमाल, उसकी कोई सिफत वक्ती हो सकती है, और उसमें भी हजार कमियां होंगी, किसी को मौत आ जाएगी, किसी को हादसा आ जाएगा, किसी को बीमारी आ जाएगी, कोई वैसे ही वक्त के साथ साथ पुरानी हो जाएगी चीज, मगर अल्लाह ताला वो जात है जो बुलंद है, बुजुर्गी वाला है, अजमत वाला है, उसको ना मौत है ना उसके ऊपर कोई गलबा पा सकता है। असल में दुनिया में जितना भी शिर्क है वो इस वजह से है कि उन्होंने अल्लाह ताला की बुजुर्गी को समझा नहीं, उसकी शान को जाना ही नहीं, और वो उसकी बुजुर्गी के सामने किसी और की बुजुर्गी नहीं, उसकी अजमत के सामने किसी और की अजमत नहीं। और अगर की मखलूक में किसी को कोई थोड़ा सा मकाम मिल भी गया है तो वो भी उसकी अता है, इसीलिए वो सारी तारीफ उसके लिए है। ओके, किसी चीज की भी तारीफ करेंगे तो उसको उस रब ने ही दी हुई है, फरिश्ते उसकी शान और उसकी बुजुर्गी और उसकी अजमत को समझते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान चिरचिरा रहा है, और उसको हक है कि वो चिरचिराए, कि उसमें एक बालिश्त भर भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे कोई फरिश्ता अल्लाह ताला की तस्बीह ना बयान कर रहा हो, जहां पे कोई फरिश्ता क़याम में ना हो, रुकू में ना हो, सजदे में ना, अल्लाह ताला की इबादत में इतने फरिश्ते लगे कि वो जात बहुत बुजुर्गी वाली है। अल्लाह अकबर। और इसके बाद हमें फिर कुरान मजीद को भी बहुत वक्त देना चाहिए, और इसके साथ भी जितना आप इसको इज्जत दें और जितना इसके तिलावत करें और जितना इसको समझने में वक्त लगाएं वो करें, इसलिए कि इसकी भी शान क्या है कि ये भी मजीद है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।